ओम शांति। कल की बात तो बाबा की सबको याद ही है। कौन सा अभ्यास? पांच स्वरूपों का। कितना अच्छा ये श्रेष्ठ भाग्य है हम सबका कि रोज क्या मिलता है बताओ? भगवान की गाइडेंस हमें संपूर्ण बनाने के लिए, सारे दुखों से मुक्त करने के लिए, लाइट हाउस माइट हाउस बनाने के लिए रोज मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं और नई नई बातें सिखाते हैं। ऐसा संसार में और कहीं नहीं हुआ अब तक। गुरु हुए, बड़े बड़े सत्संग चलाने वाले, साल में एक बार लोग जाते हैं, कुछ सुनाते हैं, नाम दे देते हैं, मंत्र दे देते हैं। रोज पालना, याद है आज की बात? तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान ज्ञान देते हैं। कितनी सुंदर बात है। तो भिन्न भिन्न तरह से हमें सफल, समर्थ, पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारी बातें सिखाते हैं। कल के बाबा के महावाक्यों में बाबा ही संसार है तो ये और उल्टे सुलटे संस्कार क्यों? और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, पावरफुल योगी, उनके लिए कौन सी बात थी? मन की, बोलो। मन मन शक्तिशाली आत्माओं के लिए बाबा ने कहा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, अचानक का खेल होगा और सेकंड में फुल स्टॉप लगाना होगा। यानी बहुत सारे संकल्पों को सेकंड में शांत, तब बाबा की टचिंग आएगी, तब जो कुछ हमें करना है वहां वो हमें याद आएगा। अगर हम संकल्प विकल्पों में रह गए तो वो सब कुछ भूल जाएगा। तो बाबा ने पावरफुल योगियों के लिए कहा, मन को जहां चाहें, जितना समय चाहें लगा सकें, यह है सबसे पावरफुल योगियों के लिए साधना। मन पर संपूर्ण कंट्रोल, मन जीत जगत जीत। मन को जिसने जीत लिया, विश्व को जीत सकते हैं वे। कई बाबा कहते हैं, काम जीत सो जगत जीत, दोनों मिले जुले हैं, मन जीत। तो हमें बाबा को संसार बनाना है और पांच स्वरूपों के अभ्यास की कुछ प्लानिंग करनी है। ये मूल्यां कई बार चली हैं और पहली बार विदेशियों के टर्न में ओम शांति भवन में ये बात बाबा ने सुनाई थी। उससे पहले नहीं थी, पांच स्वरूपों का अभ्यास उससे पहले नहीं था, फिर कम से कम पांच बार ये बात विस्तार से आई। यही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, मुरलियों में जो बहुत आता है ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, चलते फिरते स्वदर्शन चक्र घूमता रहे। एक तो वो ज्ञान का चिंतन, स्वयं का दर्शन होता रहे, लेकिन पांचों स्वरूपों का अभ्यास स्वदर्शन चक्र है। हम पूरे चक्र में घूम जाते हैं। छह बात कही बाबा ने, छठी हम जोड़ लेंगे, एंड में फरिश्ते बने और फिर आत्मा बनकर घर वापिस जाना है। पूरा स्वदर्शन चक्र हो जाएगा, जहां से आए थे वहीं जाना है। पांच स्वरूपों के बारे में कल एक बहुत गहरी बात थी, बहुतों के प्रश्नों का उत्तर है। योगी बनने के लिए साधनाएं तो करनी ही होती हैं। योगी ऐसे नहीं बना जाता कि कुछ भी ना करें और योग तो सहज है और लग जाएगा, सबको अनुभव है। मन भटकता है, बहुतों का भटकता है, 90% लोगों का भटकता है ज्यादा। उसको कंट्रोल करने के लिए पांच स्वरूपों का अभ्यास, संकल्प विकल्प सभी शांत होंगे। दूसरा, इन पांचों स्वरूपों का अभ्यास करने से मन मनाभव होना सहज हो जाएगा, और इनके अभ्यास करने से मन मनाभव यंत्र बन जाएगा माया को जीतने का, उसको वश करने का यंत्र। ये बाबा की मुख्य बातें थी। पांच स्वरूपों पर हम बाद में आते हैं। बाबा ही संसार है, बाबा माना शिव बाबा, भगवान स्वयं, जिससे हम योग लगाते हैं वही हमारा संसार है। संसार माना, अब उत्तर दो इसके, ताकि ये बात स्पष्ट हो बुद्धि में, इसका अर्थ क्या है। बोलो, सर्वस्व, बाबा ही मेरा सर्वस्व है, दूसरा कुछ नहीं। कोई की बजाय कर दे कुछ नहीं, क्योंकि कोई में मनुष्य आते हैं और मनुष्यों से बुद्धि हटाना भी सहज काम नहीं है, लेकिन कुछ वस्तुएं, वैभव, संसार के आकर्षण, संसार की धन संपदा, उसके पीछे मनुष्य दौड़ रहा है। आजकल तो लोभ बहुत पाप करा रहा है मनुष्यों से, कलयुग के अंत में जैसे काम वासना का प्रकोप है, लोभ का भी प्रकोप है। और बहुत लोगों की ये वृत्ति बन गई है कि जिसने पैसा दिया उसको देना नहीं है, बहुतों की हो गई, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं सबको क्लास में ही कह देता हूं, अगर किसी को आप पैसा दे रहे हैं इसलिए कि वो लौटा देगा, वो आपका भाई भी हो सकता है, ये सोच के देना कि वापस नहीं आएगा, वो आपका भाई भी हो सकता है। क्योंकि इसी ग्रुप में एक ये बात आ गई, एक माता आई, अपने भाई को ही मैंने 50 लाख दे दिए, साहूकार हैं, पति को नहीं बताया, अब वो देता नहीं है, ये बहुत चल रहा है। अब देखो, संबंध भी दुश्मनी में बदल जाता है और पैसा भी जाता है, कोई नहीं देगा आजकल, बैंक को, बैंक वालों को भी नहीं मिलेगा, ध्यान दे दें आप, इसलिए बैंक फेल्योर होने की तरफ बढ़ जाएंगे कुछ ही सालों में। जो लोन ले रहे हैं वो दे ही नहीं पाएंगे, कहेंगे मकान है हम रहते, ले जाओ भाई, अब मकान खरीदने वाला कोई नहीं होगा बैंक वालों के पास, कहां से होगा, ये सब भी फेल होने की ओर चला जाएगा। तो सभी, बाबा ही संसार है, माताजी या तो बंद कर दो या सुनाओ बाहर जाके, बाबा ही संसार है। बाबा से एक बार पूछा गया था ये कि इसका मीनिंग क्या है, अव्यक्त बाबा से, तो बाबा ने उत्तर दिया था, मेरे सामने की बात है, बाबा अपने कमरे में आए थे, बाबा का उत्तर था, संसार में दो चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव, वस्तुएं। जो प्राप्ति मनुष्य को इन दोनों से होती है, अधिक से अधिक प्राप्ति, वो सब एक से करना, वो सब एक से होगी, उससे ऐसा नाता हो जाए, उससे ऐसा प्यार हो जाए कि सब कुछ उससे मिलने लगे, धन भी मिलेगा, अथाह मिलेगा। और बाबा ने राज बता दिया, ज्ञान धन जिनके पास बहुत है, जो ज्ञान धन का दान करते हैं उन्हें स्थूल धन की कमी नहीं होती। सभी समझ लें बाबा का महावाक्य। तो सब कुछ मिलेगा, प्यार मिलता है लौकिक में, आजकल तो उसकी भी कमी पड़ गई, बहुत पड़ गई या नहीं। अब माताएं बेचारी बच्चों को भी प्यार नहीं दे पाती, क्यों, सवेरे ही नौकरी करने चली गई, शाम को जब आई तो क्या हाल होगा, कोई टेंशन में आई, किसी को उसके ऑफिसर ने डांटा है, किसी की बुरी दृष्टि का सामना करके आई है, कुछ कामकाज की उलझन हुई है, किसने उसकी शिकायत कर दी है, मिलेगा बच्चों को प्यार, निगेटिव वाइब्रेशन ही जाएंगे। ये हमारी एजुकेशन का, और ये जो समानता आई नर नारी की कि बहनें भी बराबर हैं, पढ़े भी बराबर तो पुरुषों के साथ नौकरी भी बराबर करें, बात तो ठीक थी, देश का विकास हुआ, लेकिन नई पीढ़ी के लिए ये अति विनाशकारी हो गया। माताएं अपने बच्चों की पालना नहीं कर पाती, बोलो, बहुत सारी बैठी हैं, मैं ठीक कहता हूं या गलत है। ये ठीक है कि पैसा चाहिए, काम भी करना पड़ता है, महंगाई का समय है, बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, फीस बहुत ज्यादा है, आजकल तो प्राइवेट स्कूल बच्चों के बड़ा भारी बिजनेस है, भारी, छोटा मोटा नहीं, और ट्यूशन साथ में, तो पैसा चाहिए, इसलिए दोनों को काम करना पड़ता है, लेकिन इसका इफेक्ट नई जनरेशन पर बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए वो कहां लग गए हैं, मोबाइल में, वो मोबाइल में लग गए हैं, प्यार उनको माँ बाप का मिलता नहीं, तो प्यार के पीछे भटक रहे हैं संसार में, इसलिए युवकों का पतन हो रहा है। हम सभी बाबा से सब कुछ ले, प्यार भी उससे मिलेगा, मिलता है या नहीं, वो निराकार है, निराकार का प्यार मिलता है, मिलता है, थोड़ा आगे आ जाओ बहने, इधर आ जाओ, निराकार का प्यार मिलता है, कहां से, अनुभव होता है, और बताओ कहां से मिलता है। एक और चीज है बहुत अच्छी, मुरली से, उसके महावाक्यों से, अगर आप साकार बाबा की टेप सुन लें कभी, जो क्लियर हो, 5-10 तो होंगी ना, 5-10 तो मुरली रिकॉर्डिंग है, बहुत हैं जो क्लियर है, ले लेना, सुनना, आपको पता चलेगा उसके बोल में क्या क्या समाया हुआ है। भगवान बात करता है, मनुष्य नहीं, ब्रह्मा बाबा की बात नहीं उसमें, सम्मुख और प्यार, अपनापन, अपने बच्चों से बात कर रहा हूं। ज्ञान का सागर है तो अथा ज्ञान, प्यार का सागर है तो अथा प्यार, सब कुछ मुरलियों से झलकता है। पहले तो हमारे यहाँ जब बाबा व्यक्त हुए तो हर गुरुवार और सोमवार को ये बाबा की टेप चलाई जाती थी, लेकिन क्या थी, आवाज क्लियर नहीं थी, उन दिनों टेक्नोलॉजी तो कुछ नहीं थी ना, जब बाबा थे ये भी नहीं था, सोचो भगवान के लिए ये भी नहीं था, ये डंडा भी नहीं था, ये जो स्टैंड है ना, ये भी नहीं था, एक वो मोटा सा होता है वो यहाँ रखा जाता था, अभी दूर से, और रिफाइन तो थी नहीं टेक्नोलॉजी, दूर से कभी कभी साइड में रखा जाता था, तो वो रिफाइन नहीं हुई इसलिए वो छोड़ दिया गया फिर धीरे धीरे। नहीं तो उन मुरलियों में सचमुच जादू है, आवाज में वाइब्रेशंस होते हैं ना, और वो ब्रह्मा की आवाज और निराकार शिव की आवाज, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस उसमें होते हैं, सुना करें सभी, 2-4 ले ले, या नेट पे आता होगा, नेट पे भी तो होंगी, वो भी होंगी, उससे सुन लिया करें। तो बाबा से हमें सब कुछ मिलता है, वही हमारा संसार है, उसके अलावा बुद्धि कहीं न भटके, छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कहने को तो हम गीत भी गा लेते हैं, बाबा ही संसार है, लेकिन बात बहुत ही गहन है ये, बुद्धि भटकती है, मानव संसार में कहीं भटकती है, मनुष्यों की ओर भटकती है, देहधारियों की ओर भटकती है, और देहधारियों से सब जगह धोखा मिलता है। आजकल बहुत हो गया है धोखा ही धोखा। माताएं भी गड़बड़ करती हैं, एक माताएं बुरा न मानना। लड़की से प्यार कम, लड़कों से ज्यादा। खुद भी लड़की रही है कभी, लेकिन माताओं की ये भेदभाव की नीति अच्छी नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। आज भी एक का आया मेरे पास, माँ ने मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया, भाई से ही सब कुछ करती थी मेरे लिए नहीं। अब भाई की हुई शादी, बहू आई वो भी लड़की, कैसे सास की नाक में दम। दम तो नाक में ही होता है, पर ये कहावत है। अब ये कहती है कि अब देखो उसके लिए आपने सब कुछ किया है, अब देख लो लड़का भी बहू का हो गया। और लड़की सास से बिल्कुल शत्रुता, लड़के के लिए सब कुछ किया अब कोई नहीं है। एक ऐसा ही केस दिल्ली का, बूढ़े हो गए बेचारे माँ बाप, कोई नहीं सेवा करने वाले। दो लड़के उनकी पत्नियां, उनके लड़के उनकी पत्नियां, कोई नहीं। जिनके लिए उन्होंने जीवन लगा दिया कोई नहीं। बहुत बुजुर्ग हो गए, 85-85 साल के। तो यह है संबंधों का हाल। फिर भी मनुष्य इन संबंधों में, बोलो भाई लोग बोलो, अब माताओं से नहीं पूछूंगा, उलझा हुआ है। उलझा हुआ है ना, न छोड़ सकता न निभा सकता। ये स्थिति आजकल संबंधों की है। अब इसमें से हमें बीच का मार्ग निकालना है, है या नहीं। अब माताएं बताओ, न छोड़ सकते न निभा सकते। अब वो दोनों बुजुर्ग रोते ही हैं, उनके वो देखने भी नहीं आते, जिनके लिए बहुत मोह था। अब मोह पर भी अटैक होता है ना। इसमें सबसे बुरी स्थिति इसलिए होती है कि मोह पर भी वार हो रहा है, मोह ममता बड़ी है, बच्चों से थी फिर उनके बच्चों से हुई और वो कोई नहीं पूछता। तो मोह पर अटैक होता है तो डिप्रेशन होता है, इससे बचना है। इसलिए एक बाबा ही संसार है, अगर उससे हमारा नाता बहुत अच्छा होगा, ध्यान से सुन लें, अगर एक से हमारा नाता बहुत अच्छा होगा तो बोलो कौन उत्तर देगा। यहाँ के नाते भी अच्छे हो जाएंगे, समझ रहे हैं सभी। बाबा ने कहा जो एक बाबा के प्यार में मगन होते हैं उन्हें जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलता है। अब सोच लें आप, नातों को ठीक बनाने के लिए नातों में उलझ जाएं, या नातों को ठीक रखने के लिए एक से पूरा नाता जोड़ लें। सोच लेना है, सब कुछ चिंतन कर लेना है। तो हमें एक को ही अपना सर्वस्व बना देना है, वही मेरा संसार है, वही सब कुछ है। बाबा ने पिछली बार कहा था द्वापर युग से, लौकिक सब देख लिया ना, क्या मिला। सीधा बोला था भगवान ने, क्या मिला। देहधारियों से नाते रख कर क्या मिला। दुख बढ़ा, तनाव बढ़े, संबंधों में परेशानियां बढ़ी, नीचे उतरते ही आए। माताओं के चेहरे देख रहा हूं मैं साथ साथ, कुछ कुछ हो रहा है, क्या करें। बच्चे तंग कर रहे हैं, पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। माताओं के ये प्रश्न बहुत आते हैं, इसका उत्तर मेरे पास भी अभी तक नहीं है। मोबाइल के व्यसनों से बच्चों को कैसे छुड़ाएं, एडिक्शन है ना ये भी, आजकल ये बड़ा एडिक्शन है, लत, कैसे छुड़ाएं। भाई मैंने कहा मुझे भी नहीं आता इसका उत्तर, तो योग लगाओ, थोड़ा योगदान दो। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मोबाइल चाहिए, पढ़ो तुम मेरे लिए। तो बाबा ही संसार है, चिंतन करेंगे सभी, एक से सब कुछ लेने का समय है। देहधारियों के साथ तो हम 84 जन्म रहते हैं, 5000 साल। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, दो युग देवताओं के साथ रहे, दो युग मनुष्यों के साथ रहे, अब मेरे साथ रहो, बुद्धि योग से निराकार के साथ। बड़ा सुख है इसमें, परमानंद है इसमें, है या नहीं? संसार और संस्कार, अगर हम इस तरह की अनुभूति में रहें, तो हमारे संस्कार स्वतः ही बदल जाएंगे। कौन कौन से संस्कार हैं मनुष्य के लिए जिसे उन्हें बदलना जरूरी है? संस्कार गिनाओ। क्रोध का संस्कार गिनाओ, अब मोह छोड़ दो, माताएं दुखी हो जाएंगी मेरी बात सुन के मोह की, और बोलो कुछ। ईर्ष्या का संस्कार, पर चिंतन का भयानक संस्कार, भयानक। बहुत माताएं सीधा उत्तर पूछती हैं प्रश्न, मैं पर चिंतन बहुत करती हूँ, कैसे बचूं? सीधा प्रश्न, क्योंकि उन्हें बाबा के पास आके अनुभव अनुभूति होती है, रियलाइज होता है कि हम पर चिंतन में जीवन गुजार रहे हैं। चेहरे पर उस तरह के लक्षण हैं, खुशी नहीं है, संतोष के लक्षण नहीं हैं, चित्त चैन नहीं पा रहा है, चिंतन करेंगे। दूसरों का चिंतन तो सारा संसार कर रहा है, भगवान के बच्चों को चिंतन करना है अपना। दूसरों को तो सब देख रहे हैं, हमें देखना है स्वयं को। चिंतन की जरूरत है, ये श्रेष्ठ चिंतन ही पर चिंतन से बचाएगा। बुरा बोलने का संस्कार, अभी मैं खाना खा के नीचे जा रहा था, दो बहनें बात कर रही, मेरे से नहीं आपस में, थोड़ा जोर से बोल रही, दूर तक मुझे सुनाई दिया। वो कहती है मुझे, इधर आ, मेरे को बहुत फीलिंग आती है। दूसरी उसे समझा रही, कुछ बुरा तो नहीं बोलती, क्यों फील करती हो? मैं सोच रहा था, देखो बुरा तो नहीं बोलती, लेकिन बोलने का तरीका तो बुरा है या नहीं? प्यार से भी तो कहा जा सकता है, इधर आओ बहन, इंग्लिश में तो प्लीज कह के बुलाते हैं, इधर आओ आओ, लेकिन वो बोलती इधर आ, तो इंसल्टिंग फीलिंग है ना, फीलिंग आएगी ना बेचारी को, तो वो कहती है मैं इसके पास नहीं रहूंगी। तो कईयों का ये गलत बोलने का संस्कार उनको भी बहुत नुकसान कर रहा है और दूसरों को भी कष्ट दे रहा है। ज्वलंत उदाहरण मेरे पास है, उस दिन से, अभी 2-4 दिन का ये, मेरे को उस दिन से ही ये सीन आता रहता है। किसी ने कहा मेरे स्वभाव के कारण यहाँ की सेवा नहीं बढ़ी, मुझे पता नहीं था, मैंने पता किया, 10 आत्माओं को उसके द्वारा अति कष्ट हो गया, 10, मैं नाम और काम नहीं बताऊंगा किसकी बात है। कहा मुझे गिल्टी फीलिंग हो रही है, मेरे कारण इनका सबका जीवन बर्बाद ही हुआ और ये अब डिप्रेशन में है। बहुत लोग अब डिप्रेशन में आ रहे हैं, वो जिन्होंने बोल से दूसरों को कष्ट दिए हैं, वो कष्ट कई गुना होकर वापस आ रहा है, इसे अब भी सावधान होने की जरूरत है। हम पुण्य आत्माएं हैं, हम सुखदाई हैं, संकल्प करो आज से हम सुखदाई हैं, हमें सबको सुख देना है, हमारा तो जीवन ही सुख देने के लिए है, दुख तो सब दे रहे हैं, भगवान के बच्चे भी यदि दुख देंगे सुख कौन देगा? जिनका काम भगवान ने तय कर दिया तुम्हें सबके दुख हरने हैं, उन्हें किसी को दुख नहीं देना, नहीं तो रिटर्न बुरा हो रहा है, डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं लोग। समझदारी से काम लेना है, बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और 2025 तक संसार इस चक्रव्यूह में घिर जाएगा, और कारण और कुछ नहीं, पाप कर्म, कष्ट देना, सताना, दूसरों की खुशी छीनना, दूसरों की संपत्ति हड़पना, संपत्ति लेने के लिए तंत्र मंत्र करा देना, बहुत खराब बात है। मैं सभी के फायदे के लिए एक सच्ची घटना सुना देता हूं, नजदीक की है, 2-4 मास पहले की, यूपी की है। उसने मुझे शहर का नाम तो नहीं बताया जिसने सुनाई कि देखो कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक परिवार में 3 भाई, एक की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी को 2 बच्चे। उन्होंने कहा भाई हमारा हिस्सा हमें दे दो, बच्चों को पालना है मुझे। नहीं दिया, कोर्ट केस कर दिया इसने। कोर्ट ने इसके फेवर में निर्णय दे दिया 2 भाई से, लेकिन आजकल कोर्ट की भी लोग मानते नहीं। वो आया दूसरा भाई, इनको डराया धमकाया, कुछ नहीं मिलेगा। इस बहन ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, थोड़ा ही दे दो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। कहा सुनी हुई, और उसने तीनों को बंदूक से मार डाला। बंदूक से मारने के बाद क्या हुआ होगा उसका, वो तो सब जानते हैं। पुलिस पकड़ के ले गई उसको। कुछ ही समय के बाद, साल के बाद नहीं, कुछ समय के बाद उसके 2 बच्चे, उनकी 2 बहू, उनके 3 बच्चे, 7 लोग कार में मैरिज के लिए जा रहे हैं कहीं, और एक्सीडेंट भयानक होता है और 7ों की तत्काल मृत्यु। सोच लो ठीक हुआ या नहीं। सुन तो हो गए आप सुन के, पर मैंने पूछा ठीक हुआ या नहीं, बोला तो नहीं जा रहा आपसे, पर ये ठीक ही हुआ। संपत्ति के कारण रह गई वो जिसको संपत्ति का लालच था, वो अकेली बची कि मेरे बच्चों को ये सब कुछ मिले, इन्हें मार दो। वो अकेली बच गई, अब बोलो उसको मिलेगा क्या, करेगी लेके। बचना है इस महापाप से, ये लोग संसार को खाए जा रहा है, बचना है इसको। सब भाई भी बहने भी संतोषम परम सुखम, संतोष की रोटी खाओ, पाप की रोटी नहीं खानी है। बच्चे बिगड़ रहे हैं क्यों, बहुतों के बच्चे बिगड़ रहे हैं। एक बड़े ऑफिसर की युगल आई अभी, बच्चे उसके 2 बिगड़ रहे हैं। मैंने पूछा क्या है, डिप्टी डायरेक्टर बहुत बड़ी कंपनी का, मैं समझ गया क्यों बिगड़ रहे हैं। कोई बताता नहीं किसी को, मैं बता देता हूं। गलत पैसे से बच्चों की पालना हो रही है। अब आप देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सभी भाई बहने अच्छी तरह आराम से इस बात को समझ लेंगे। आप किसी ऑफिसर के पास काम कराने गए हैं, आपके पास बहुत पैसा नहीं है। वो कहता है मुझे 10,000 रुपए दो तो ये काम होगा, इसके अलावा वो करता नहीं है। अब आप मन मार के कहीं से उधार लेके 10,000 रुपए लेके गए हैं, उसको देने के लिए आपने उसे 10,000 रुपए दिए, आपके काम आपका काम हो गया। अब वो 10,000 अपने पर्स में डाल के ऑफिसर घर पहुंचा है, उस 10,000 के साथ और क्या ले आया, उसकी आहें, जिसने बहुत ही बुरे मन से, भारी मन से वो 10,000 उसे दिए हैं। तो जब वो 10,000 का यूज जहां भी करेगा, होगा वहां कुछ, वो बद्दुआएं भी काम करेंगी। ये जो कर्मों की गति है, इसको मनुष्य समझ नहीं रहा, समझ लेना है। तो हमें अपने संस्कारों को बदलना है। देख लें मेरा कौन सा संस्कार मेरे लिए या दूसरों के लिए कष्टदायी है। कल तो बाबा प्रतिज्ञा भी करा रहे थे ना, अपने से खुद दृढ़तापूर्वक संकल्प करने हैं, मुझे क्या करना है जल्दी। अब समय ऐसा आ रहा है, हम नहीं बदलेंगे तो समय हमें बदलेगा, और समय की मार भारी होती है। समय की मार अच्छी नहीं होती, भारी पड़ती है बहुत। तब मनुष्य को अपने को बदलना ही पड़ता। एक व्यक्ति बहुत अहंकारी है, हॉस्पिटल में जाना पड़ा 2 मास, जेंटलमैन बन के वापिस आया है। ज्ञान योग से जेंटलमैन नहीं बना था, बीमारी ने, हॉस्पिटल ने, वहां जो सब कुछ देखा उसके अहम को नष्ट कर दिया। नम्रता आ गई, प्यार बढ़ गया मनुष्यों से, नहीं तो सीधे मुंह बात नहीं करता। ये मैं आपको केवल झूठी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये सच्ची घटनाएं हैं। हम देखते रहते इन चीजों को कि जिनको भगवान नहीं बदल सका उन्हें हॉस्पिटल ने बदल दिया। इसलिए बाबा ने हॉस्पिटल को नाम दिया था कभी। गुलजार दादी जब हॉस्पिटल में जा रही थी, हॉस्पिटल नहीं होली स्थल तीर्थ, तो बहुतों के लिए होली स्थल बन गए हैं हॉस्पिटल। अब हम आ जाएं पांच स्वरूपों का अभ्यास सबको करना है। बाबा ने तो कहा हर घंटे, कितनी देर तक? पांच सेकंड तो कुछ होता नहीं है बाबा के लिए, तो वो तो बियॉन्ड टाइम है ना, समय से परे रहता है उसे। टाइम, सेकंड, मिनट, घंटे, इसमें कुछ अंतर नहीं दिखता। परम धाम में थोड़ा ही देर लगती है, वहां तो युग ऐसे ही बदल जाते हैं। कल, अरे कल मैंने स्वर्ग बना के दिया था, क्या कर दिया इन्होंने आज? मुझे वो नीचे आता है उसे ऐसा ही लगता है। बियॉन्ड टाइम, समय से परे है ना शिव बाबा। तो एक मिनट कम से कम पांच स्वरूपों का अभ्यास, दस सेकंड मिल जाएगा ना एक के लिए, फिर तीन मिनट, फिर पांच मिनट, तीन राउंड, चार राउंड लो सवेरे और चार सोने से पहले, क्योंकि घंटे वाली बात प्राय सफल होती नहीं, फिर निराश होते हैं, अवज्ञा हो गई, भूल जाएंगे थोड़ी देर में। तो चार बार सवेरे उठ के, चार बार रात को सोने से पहले। कैसे करेंगे? जो बाबा ने आज तक बताया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और सबको अच्छा अभ्यास करना, करते भी होंगे सभी, क्योंकि जब से बाबा ने कहा है, इस पे क्लासेज भी बहुत हुई हैं और बाबा ने भी बीच बीच में इसको रिवाइज कराया है। ये स्वदर्शन चक्र है, इसमें हमें उस स्वरूप को देखना और उसका चिंतन करना है। देखना भी है दिव्य बुद्धि से और उसका चिंतन भी करना है। आत्मा, कल भी बाबा ने कहा अपना स्वरूप सामने आ गया, चाहे सामने ले आओ चाहे यहां मस्तक के मध्य में, मैं आत्मा। कैसी? केवल बिंदी नहीं, बिंदी तो एक पेन से भी लगा देते हैं ना, वो बिंदी, वो नहीं, जिससे बहुत तेज फैलता है, जिससे पवित्र किरणें फैलती हैं, जिससे शक्तियों की तरंगें चारों ओर फैलती हैं। बाबा का एक बहुत सुंदर मुरली प्योरिटी पर इसी संबंध में पांच स्वरूपों की ही बात की उसमें बाबा ने, कि तुम आत्माएं वैसे भी परम पवित्र हो मूल रूप में, पर जब तुम परम धाम में हो तो तुम्हारी लाइट और सभी आत्माओं से बहुत ज्यादा है। तारों का उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे कोई सितारा बहुत चमक रहा है आसमान में, कोई धुंधला, भले ही हम ये जानते हैं जो बहुत दूर है वो थोड़े धुंधले हैं, उसमें क्या क्या है उसके अनुसार उनकी चमक है, सूरज की किरणों से चमकते हैं ये सब। लेकिन हम अपने को ऐसी आत्मा देखें जिसका प्रकाश, जिसका तेज, जिसकी लाइट बहुत ज्यादा है, अपने चारों ओर भी प्रभा मंडल देखें, आत्मा के चारों ओर। आपने देखा होगा चंद्रमा के चारों ओर घेरा कभी कभी लाइट का, उसको आभा मंडल, प्रभा मंडल, इंग्लिश में ओरा कहते हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा के चारों ओर भी बड़ा प्रभा मंडल है। अपने को इस स्वरूप में देखेंगे और चिंतन करेंगे, मैं आत्मा। अब जितना अच्छा जिसका चिंतन वैसा ही अच्छा अनुभव, मैं आत्मा। बोलो अब चिंतन। गुणों का पुंज हूं, जगमगाती लाइट हूं, बोलते जाओ। अच्छा बोल रहे हैं, हैं? देखो मेरा फोन आ गया कहीं से, बोलते जाओ तब तक मैं तो बंद करूंगा। ज्योति स्वरूप हूं, और बोलो, मैं आत्मा, जिसे मजा आए कुछ सोचने में, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, चमकती मणि हूँ, जहान का नूर हूँ, बाबा के नैनों का नूर हूँ, सुंदर विचार देंगे आत्मा के बारे में, मस्तक मणि हूँ, तो ऐसा ही स्वरूप अपना देखते रहेंगे और ये चिंतन करते रहेंगे तो अनुभूति होने लगेगी। फिर धीरे धीरे क्या अनुभूति होगी, मैं आत्मा शांत हूँ, शांत होने लगेंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्रता बढ़ने लगेगी, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, शक्तियां बढ़ने लगेंगी। तो अपने स्वरूप को भी देखना है और चिंतन भी करना है, ध्यान देंगे दोनों बातों पर, एक मिस होगी तो अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, मन भी और बुद्धि भी, मन चिंतन करेगा, बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है, उससे हम उस स्वरूप को देखेंगे। अब चलें फिर आदि स्वरूप, कौन सा हमारा आदि का स्वरूप, देवी देवता। हम पहले तो ब्रह्मा बाबा को सामने लाए, क्यों नहीं, बाबा को भविष्य का जितना नशा था, बिल्कुल बाबा कहते थे, अव्यक्त में एक मुरली भी चली है, जैसे कि वो देवताई ड्रेस मेरे सामने टंगी हुई है शरीर, और मैं आत्मा यहां से निकलकर बस इसमें गई की गई, ऐसी गुड फीलिंग। तो भविष्य का नशा क्या होता है, उससे फायदा, वो सारे संस्कार शक्तियां गुण प्योरिटी इस जीवन में आने लगेंगे। तो मैं देवी थी देवता था, अपना स्वरूप सामने लाओ, ऐसे थे हम, फिर उसका चिंतन, जब ऐसे थे तो कैसे थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कलाओं से युक्त थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, धन कितना था गिनती नहीं, सोने की ईंटें बनती थी, हीरे जड़े जाते थे मकानों में, और ज्वेलरी कैसी होगी माताओं की, अब तो बाबा सफेद कपड़े पहना रहा है, फिर जड़त होगी, हीरो हीरे जड़े होंगे साड़ियों में आपके, अथा सोने की जरी कहते हैं, जरी का काम वो बहुत सुंदर होगा, अथा धन संपदा, केवल धन संपदा नहीं, संपूर्ण सुख शांति पवित्रता चैन विश्राम, जो आजकल की ये समस्याएं ये वहां है ही नहीं, जीरो, न टेंशन है न चिंता है न समस्याएं है न रोग है न पुलिस न कोर्ट न हॉस्पिटल, कुछ नहीं है, इन सब से मुक्त। ये पहले भी तो नहीं थी, अब से 200 साल पहले कितनी थी, जब राजाओं का राज होता था, राजा के साथ एक जज होता था, बस राजा खुद फैसले कर देता था, बाकी जज को दे देता था तुम कर दो। तो ये सब बढ़े हैं 200-300 साल में ही, अब ये सब समाप्त होंगे, तो अपना स्वरूप सामने लाएंगे, ये मैं हूं, कितने जन्म लिए उस तरह के हमने, 21, माताएं तो बहनें कन्याएं ऐसे चुप हो गई, पता ही नहीं कितने लिए, सोचने लगी कैसे गिनती करें, किए कितने हुए, 21 जन्म स्वर्ग में, संपूर्ण सुखों में, मेहनत के बिना, कमाने की चिंता के बिना, कहां से कमा के गए, संगम युग से, कमाना ही नहीं, देखो कितनी बड़ी चीज है, चिंतन किया करें अपने जो ब्राह्मण स्वरूप है उसके लिए, कैसा सुंदर समय आया, भगवान हम सब के लिए क्या क्या लेकर आया, हम उसके लिए कितना थोड़ा करते हैं और वो क्या कर देता है हमारे लिए, सोच के देखो, समझ से भी परे की चीज है। हमने थोड़ा सा किया, उसने 2500 साल के लिए सब कुछ दे दिया। कंचन काया, कोई रोग नहीं होगा, लंबी आयु, सुंदर परिवार, कोई तनाव नहीं, कमाना ही नहीं है, यहीं से ले गए सब कुछ। संसार की समझ से, विचारों से परे की चीज। सोचना है हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। सोचेंगे आपके बच्चे अच्छी परीक्षा देने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत। जो अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास 2-3 आ गए इसी ग्रुप में, IAS कर रहे हैं, कलेक्टर जिससे बनते हैं ना, कमिश्नर, क्या करें। एक बार दे दिया है, नहीं नंबर लगा, 1 नंबर से रह गया। कितनी मेहनत कर रहे हैं वो रात दिन। एक आज ही आया, हरियाणा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें उसका नंबर आ गया। अब वो जो देश की है सिविल सर्विसेज, उसके लिए दे रहा है। क्या करूं मैं, कितनी उसको मेहनत का संकल्प था, कितना डेडिकेट किया हुआ था अपने को उस नौकरी के लिए। और जिन्हें रजाई मिलती हो वो भी 2500 साल के लिए, वो क्या कर रहे हैं, मौज मना रहे हैं, मौज मना रहे हैं। एग्जाम देने का कंपटीशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, ये वो कुछ नहीं है। राज तिलक स्वयं को स्वयं ही देना है, मुरली चली ना अभी, मैं नहीं दूंगा, खुद को खुद दो। पढ़ाई से, योग से, प्योरिटी से राज तिलक मिलता है। क्या कर रहे हैं हम, चिंतन करेंगे। स्वरूप हमारा पूज्य स्वरूप, अपने को उस पूज्य रूप में देखेंगे। देवियां देखेंगी बहने सभी, और भाइयों के पूज्य स्वरूप कौन कौन से हैं, हनुमान है, गणेश है, और कौन है भाई, नारायण भी हैं, विष्णु हैं, और भी कोई हैं, शंकर भी हैं, शंकर जैसी तपस्या, ठीक है ठीक है, ये सब भी हैं। तो हमें अपने अपने पूज्य स्वरूप को सामने रखना है, ये मेरी यादगार है। और एक चित्र बनाना है, मैं मंदिर में हूँ, देवी मंदिर में, सामने भक्त हैं। देखो ऐसा चित्र बनाए तो सहज अनुभूति होगी, सामने वाले भक्त, 200 भक्त खड़े हैं, मेरे इस पूज्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा है उन्हें, फिर गुणगान कर रहे हैं मेरा। गुणगान क्या करते हैं भक्त, हे देवी तुम असुर संहारिणी हो, विद्यादायिनी हो, सिद्धि दाता हो, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो, पाप नाश करने वाली हो, दुख हरने वाली हो, जो शिव बाबा की है वो सब, तुम ये हो, ये हो, ये हो। अब सुनो, जैसे भक्त कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, मैं ये हूं, भरें अपने अंदर तो बनते जाएंगे। जब हम स्वीकार करते हैं ना, मैं ये हूं, तो वो बनते जाते हैं। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण के बारे में अपने स्वमान, अपना श्रेष्ठ भाग्य, प्रभु मिलन की खुशी, क्या हो गया हमारे इस 84 जन्मों के बाद अंतिम जन्म में। उस दिन की मुरली थी, याद है आपको, तुम्हारी मुसाफरी पूरी हो रही है, अभी तो थे 3-4 दिन पहले। अब इस तरह सोचें, मुसाफरी जब एंड में आई, थक गए, ये भी भूल गए किधर से आए थे, कोई तीर्थ करने जाए और जब वापिस आ रहा हो ये भूल जाए कहाँ जाना है, कैसा लगेगा। हम सब के साथ यही हुआ, कहां से आए थे ये सब भूल गया, थक गए। भूल गया तो थकेंगे ना, कभी इसके घर में जाएंगे, कभी उसके घर में, कहेंगे तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहां से। थक गए, बोर हो गए, टेंशन में आ गए, दुखी हो गए, तो भगवान स्वयं आ गया। पहले तो थकान उतार दी, माताओं की कैसे उतारी, पांव दबाकर। हाँ, माताएं खुश हो गई, पांव भाइयों के पांव नहीं दबाए, माताओं के दबाए, भगवान ने पैर दबाए। एक पैर दबाना तो यही है आते का, मीठे बच्चे तुम मेरे हो, आ जाओ। थकान उतर गई, दृष्टि दे, खींच ली सारी चिंताएं और सारा कुछ जो अंदर भरा हुआ था सब निकाल दिया, हल्के कर दिया। संगम युग को याद करें, क्या क्या हो गया, भगवान आ गए राह दिखाने, ये है तुम्हारा घर, चलो मैं आ गया हूँ लेने, तुम खुद नहीं जा सकते, मैं आया हूँ लेने। ऐसे जाओगे, पावन बने बिना वहाँ कोई नहीं जाता, विकर्मों को नष्ट किए बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता। फिर हमें काम दे दिया, तुम्हें चलना भी है और ले चलना भी है, बड़ा काम दे दिया। फिर फरिश्ता, अपने फरिश्ते स्वरूप का भी सामने चित्र बना दे, देखो कैसा चित्र बनाएंगे, मैं ही सामने हूँ, दीवार अपने से 10-20 फुट दूर, मेरा शरीर लाइट का है, चित्र बनाएंगे और मस्तक में आत्मा चमक रही है, अलग चमक रही है, दोनों के रंग अलग अलग कर दो, शरीर सफेद और आत्मा उसमें भिन्न भिन्न कलर की वाइब्रेशंस निकल रही हैं, चमकदार तेजस्वी, और ये फरिश्ता स्वरूप मेरा और मैं धरा से ऊपर, बंधनों से मुक्त, आकर्षणों से मुक्त, संपूर्ण पवित्र विश्व कल्याण के लिए आया हूँ। चिंतन, चिंतन आवश्यक, ये मैं हूँ। तो इस तरह हम पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, सोने से पहले करना, 4 बार, उठते ही करना, योग सहज हो जाएगा। ओम शांति।